आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मरकज ने तकरीबन 3,60,000 करोड़ रुपए की मालियत के राफेल लड़ाका तैयारों और दीगर फौजी साजो सामान की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। इनमें से ज्यादातर लड़ाका तैयारे मुल्क में ही तैयार किए जाएंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में मरकजी बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत इक्तसादी तरक्की को फरोग देकर और जाम तरक्की को यकीनी बनाकर एक मजबूत और खुदकफील भारत के लिए काम कर रही है। पार्लियामेंट ने सनअती ताल्लुकात के जाबतों से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए मेहनत से मुतालिक पुराने कवानीन की मनसूखी के बाद कानूनी वजाहत फराहम की गई है। बांग्लादेश में अहम पार्लियामानी इंतखाबात और साथ में होने वाले रेफरेंडम के लिए पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए तमगे जीतने का सिलसिला जारी है। भारत ने नई दिल्ली में निशानेबाजी चैंपियनशिप में आज सोने के मजीद 3 तमगे जीते। और मर्दों के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी राजधानी में ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने नामीबिया के सामने जीत के लिए 210 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। दिफाई साजो सामान की खरीदारी के काउंसिल DAC ने आज मुसल्ह अफवाज की सलाहियत में इजाफा करने के लिए तकरीबन 3,60,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। वजारत दिफा ने बताया है कि भारतीय फदाइया के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA, राफेल जंगी मिजाइलों और हवाई जहाज से लॉन्च होने वाले हाई अल्टीट्यूड सीडो सेटेलाइट की खरीदारी की जरूरत को मंजूरी दी गई। वजारत ने मजीद कहा कि MRFA की खरीदारी फजाई गलबा हासिल करने की भारतीय फजाइया की सलाहियत को बेहतर बनाएगी और तवील फासले तक जारहाना हमले के जरिए उसकी दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा करेगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि हुकूमत इक्तसादी तरक्की को फरोग देकर और जामे तरक्की को यकीनी बनाकर एक मुस्तहकम और खुदकफील भारत के लिए काम कर रही है। वो राज्यसभा में मरकजी बजट 2026-27 पर बहस का जवाब दे रही थीं। मोहतरमा सीतारमन ने इस माह की पहली तारीख को पार्लियामेंट में बजट पेश किया था। वजीर खजाना ने कहा कि कम इफरात जर को बरकरार रखते हुए आला तरक्की की रफ्तार कायम रखी गई है। उन्होंने कहा कि आदादो शुमार के कौमी दफ्तर के अंदाजे के मुताबिक माली बरस 2025-26 में मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार GDP 7.4% बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सारिफ कीमत इशारे CPI इफरात जर कम होकर 2% रह गई है, जो मुल्क की मईशत की मजबूत बुनियादों की अक्कासी करती है।
12.76 लाख तक सैलरी क्लास को टैक्स ही पे करना नहीं है, कहाँ है सप्रेशन? सेकंड, स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज आल्सो बीन एनहांस्ड, न्यू टैक्स रेजिम हैज सिंप्लीफाइड फाइलिंग एंड ड्यू डिलिजेंस करने वाले काम को भी सिंप्लीफाई कर दिया, नेक्स्ट जेनरेशन GST रेशनलाइजेशन हैज आल्सो लोवर्ड हाउस होल्ड कॉस्ट, उनके मंथली खर्च कम हो रही है क्योंकि GST में हर आइटम का रेट कम हो गया है।
मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि बायोफार्मा सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, नायाब जमीनी वसायल के कॉरिडोर्स, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग निजाम, खेलकूद के सामान, टेक्सटाइल और चैंपियन MSMEs के लिए खसूसी इल्तजाम और बजट मुख्तस किए गए हैं। वजीर खजाना ने अपोजिशन के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि कई फलाही स्कीमों के लिए अखराजात कम कर दिए गए हैं। इससे कबल बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के GC चंद्रशेखर ने इल्जाम लगाया कि अगरचे 2026 के बजट में तकरीबन 53,40,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, लेकिन बड़े प्रोग्रामों को बजट का 20-30% हिस्सा भी नहीं दिया गया है। दीगर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कई अरकान ने भी बहस में हिस्सा लिया। बिल की मंजूरी के बाद राज्यसभा को कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट ने सनअती ताल्लुकात से मुतालिक जाबतों का तरमीमी बिल 2026 आज शाम राज्यसभा की जानिब से मंजूरी के बाद पास कर दिया है। इससे पहले दिन में लोकसभा ने इस कानून को मंजूरी दी थी। इस पर एक बहस का जवाब देते हुए मेहनत और रोजगार के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि इस तरमीमी बिल को कानूनी वजाहत के लिए लाया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि लेबर जाब्तों के तहत यकसा काम के लिए खवातीन और मर्दों को यकसा उजरत की गारंटी को यकीनी बनाया गया है। इस बिल की मुखालफत करते हुए कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि इस बिल में मुलाजमत देने को आसान नहीं बनाया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये लेबर जाब्ते लेबर मुखालिफ हैं। राज्य सभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी की डोला सेन, बीजेडी के निरंजन बिशी, सीपीआई के संतोष कुमार पी, सीपीआईएम के वी शिवदासन, एआईडीएमके के एम थम्बी दुरई और डीएमके के आर गिरी राजन ने बहस में हिस्सा लिया। बिल को मंजूर करने के बाद राज्यसभा ने खसूसी तस्करा शुरू किया, जिसमें अरकान ने पार्लियामेंट मुख्तलिफ मसाइल उठाते हैं। लोकसभा ने आज सनअती ताल्लुकात के जाब्तों से मुतालिक तरमीम बिल 2026 को मंजूर कर लिया है। ये बिल सनअती ताल्लुकात के जाब्ते 2020 में तरमीम करेगा। इस बिल के तहत तरमीम का मकसद इन तीनों कवानीन, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, सनअती रोजगार से मुतालिक अहकामात एक्ट 1946 और सनअती तनाजात एक्ट 1947 के निफाज में मुस्तकबिल में आने वाली किसी भी रुकावट को दूर करना है। लोकसभा में मुबाहिसे का जवाब देते हुए लेबर और रोजगार के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि मेहनत से मुतालिक 17 कौमी इदारों ने कहा है कि मेहनत से मुतालिक जाब्ते को मुतारफ कराना मजदूरों के मफाद में है। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इस कानून की मुखालफत की है। आलमी इक्तिसादी और जुग्राफियाई व सियासी हालात के तनाजुर में भारत की इक्तिसादी तरक्की के रोडमैप के लिए खजाने से मुतालिक कायमा कमेटी की सिफारिशात पर हुकूमत की कार्रवाई की 29वीं रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। ये रिपोर्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अरुण भारती ने लोकसभा में पेश की। कमेटी ने कहा कि जुग्राफियाई और सियासी कशीदगी से भरपूर आलमी मईशत के बावजूद भारत मजबूत शरह तरक्की बरकरार रखे हुए है, क्योंकि 2024-25 में हकीकी GDP में 6.5% का इजाफा हुआ। मजबूत घरेलू मांग और सरमायाकारी ने इसमें अहम रोल अदा किया। कमेटी ने मजीद कहा कि शरह तरक्की को कम से कम एक दहाई तक सालाना 8% के हदफ तक पहुंचाने के लिए सरमायाकारी की शरह को मौजूदा 31% से बढ़ाकर तकरीबन 35% करना जरूरी है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने कहा है कि उन्होंने आज लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ एक करारदाद पेश की है कि वो किस तरह मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों से बातचीत करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि उन्होंने करारदाद में दरखास्त की है कि राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत खत्म कर देनी चाहिए और उन्हें उम्र भर इंतखाबात में हिस्सा लेने से भी रोक देना चाहिए। इंजीनियरिंग के शोबे ने भारत और अमेरिका के दरमियान हुए उबूरी तजारती मुआहदे की सताइश की है। आकाशवाणी न्यूज से खसूसी तौर पर बात करते हुए भारत के इंजीनियरिंग साजो सामान की बरामदात को फरोग देने के काउंसिल के चेयरमैन अरुण कुमार गरोड़िया ने कहा कि भारत की इंजीनियरिंग बरामदात ने आलमी चैलेंजेस के बावजूद इस्तेहकाम का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से मुस्तकबिल करीब में इंजीनियरिंग से मुतालिक बरामदात को खासतौर पर फरोग हासिल होगा। जनाब गरोड़िया ने एतमाद का इजहार किया कि दोनों ममालिक 232 अशिया के मामले को हल कर लेंगे, जिन पर अब भी 50% का महसूल आयद है।
इंडिया यूएस की जो डील अभी फाइनल हुई है, जिसमें मोस्ट ऑफ द आइटम जो रेसिप्रोकल के हैं उस पर 50% से 18% ड्यूटी हो गई है। इससे इंजीनियर एक्सपोर्ट्स को काफी बड़ा बढ़ावा मिलेगा, इंडिया से एक्सपोर्ट्स अच्छा बढ़ेगा और ऐसे भी जो एक्सपोर्ट अभी तक भी हो रहा था इंस्पाइट ऑफ जो भी ड्यूटीज थी, एक्सपोर्ट कुछ न कुछ बढ़ा ही है, 5% से कम बढ़ा है, फिर भी काफी बढ़ा है।
ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। वजीर आजम का दफ्तर कल से नई दिल्ली में एक नई इमारत सेवा तीरथ कॉम्प्लेक्स से अपना कामकाज शुरू कर देगा। वजीर आजम ने मोदी से पहले इस इमारत का नाम रखेंगे। इसके बाद वो सेवा तीरथ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का बाजाबता तौर पर इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी शाम को सेवा तीरथ में एक अवामी प्रोग्राम से खिताब भी करेंगे। सेवा तीरथ कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम का दफ्तर, कौमी सलामती काउंसिल का सेक्रेटरिएट और काबीना सेक्रेटरिएट होंगे, जो सभी इससे पहले अलग अलग मकामात पर थे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में कई अहम वजारतों के दफातर होंगे। ये नया कॉम्प्लेक्स इंतजामी उमूर को जदीद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सहूलतों से आरास्ता मरकज के अंदर यकजा करता है। वजीर आजम ने मोदी ने आज नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर केरला के बीजेपी पंचायत मेंबरान, म्यूनिसिपलिटी मेंबरान और कॉरपोरेशन के मेंबरान की मेजबानी की। इस मौके पर तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन के बीजेपी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे, जहां बीजेपी ने तारीखी जीत दर्ज की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादले ख्याल किया, जिनमें अवाम से बीजेपी को जोड़ने के तरीकेकार भी शामिल हैं। इसके अलावा اچھے حکمرانی کے انڈے اور زندگی کو آسان بنانے سے متعلق موضوعات بھی شامل تھے۔ جناب مودی نے واضح کیا کہ کیرالا ایل ڈی ایف اور یو ڈی ایف کی حکومتوں سے تنگ آ چکا ہے اور بی جے پی اور این ڈی اے کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ برازیل کے صدر لوئس اناسیو لولا ڈی سلوا وزیر اعظم نے مودی کی دعوت پر نئی دلی میں ہونے والے انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے اس ماہ کی 18 سے 22 تاریخ تک بھارت کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ آج قومی راجدھانی میں صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس دورے میں جناب لولا دا سلوا کے ہمراہ متعدد وزراء اور کاروباری وفود بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی اور برازیل کے صدر کے درمیان 21 فروری کو دو طرفہ میٹنگ ہوگی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو بھی ان سے ملاقات کریں گے اور ان کے اعزاز میں ایک ضیافت کا اہتمام کریں گی۔ جناب جیسوار نے مزید کہا کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں بھی مذکورہ سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے بھارت کے 3 روزہ سرکاری دورے پر آئیں گے۔ بنگلہ دیش میں 13ویں قومی پارلیمانی انتخابات اور جولائی کے قومی چارٹر پر ریفرنڈم کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ مزید تفصیل ڈھاکہ کے ہمارے نامہ نگار سے۔
ملک بھر کے 299 حلقوں میں ووٹنگ صبح 7:30 بجے شروع ہوئی اور شام 4:30 بجے تک جاری رہی۔ انتخابی کمیشن کے مطابق پولنگ کا عمل زیادہ تر پر امن رہا۔ انتخابی کمیشن کے سینئر سیکرٹری اختر احمد نے بتایا کہ دوپہر 2 بجے تک 47.91% رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ یہ اعداد و شمار ملک بھر کے 42,651 پولنگ مراکز میں سے 36,000 سے زیادہ پولنگ مراکز سے موصولہ رپورٹس پر مبنی ہیں۔ اگرچہ کمیشن نے کہا کہ کسی بھی پولنگ مرکز پر ووٹنگ معطل نہیں کی گئی اور مجموعی صورتحال قابو میں رہی، تاہم کچھ واقعات کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اس دوران بنگلہ دیش جماعت اسلامی کی قیادت میں 11 پارٹیوں کے اتحاد نے اعلی انتخابی کمشنر سے ملاقات کی اور بے ضابطگیوں اور رکاوٹوں کے الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے 3 حلقوں میں پولنگ معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ریٹرننگ افسران اور انتخابی کمیشن کے ذریعے حتمی نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ ڈھاکہ سے نول سنگھ پرمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمران۔
بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل جموں کشمیر اور لداخ میں کہیں کہیں بارش یا برفباری کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 دن تک میگھالیہ اور ہماچل پردیش کے الگ الگ علاقوں میں صبح کے اوقات میں گہرے کوہرے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران ساحلی کرناٹک، کونکن اور گوا کے علاقوں میں گرمی اور گرم موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ نشانے بازی میں آج نئی دلی میں ایشیائی چیمپئن شپ 2026 میں 2 بار کے اولمپئن ایشوریا پرتاپ سنگھ تومر نے مردوں کے 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن مقابلے میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر کے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس سے قبل ڈاکٹر کرنی سنگھ شوٹنگ رینج میں جاری مقابلے میں نیرج، ایشوریا اور اکھل پر مشتمل بھارتی ٹیم نے ٹیم مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ اس مقابلے میں جاپان نے چاندی اور قزاقستان نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ مردوں کے T20 عالمی کپ میں دلی میں جاری گروپ اے کے میچ میں بھارت نے نامیبیا کے سامنے جیت کے لیے 210 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 209 رن بنائے۔ اس سے قبل مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے اپنی مہم کی شروعات یو اے ای کے خلاف 29 رن کی جیت کے ساتھ کی تھی۔ دن کے پہلے میچ میں گروپ بی میں میزبان سری لنکا نے عمان کو 105 رن سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے تقریباً 3,60,000 کروڑ روپے کی مالیت کے رافیل لڑاکا طیاروں اور دیگر فوجی ساز و سامان کی خریداری کو منظوری دے دی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لڑاکا طیارے ملک میں ہی تیار کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے راجیہ سبھا میں مرکزی بجٹ پر بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اقتصادی ترقی کو فروغ دے کر اور جامع ترقی کو یقینی بنا کر ایک مضبوط اور خودکفیل بھارت کے لیے کام کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ نے صنعتی تعلقات کے ضابطوں سے متعلق ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے، جس کے ذریعے محنت سے متعلق پرانے قوانین کی منسوخی کے بعد قانونی وضاحت فراہم کی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں اہم پارلیمانی انتخابات اور ساتھ میں ہونے والے ریفرنڈم کے لیے پولنگ مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ایشیائی نشانے بازی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے تمغے جیتنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت نے نئی دلی میں نشانے بازی چیمپئن شپ میں آج سونے کے مزید 3 تمغے جیتے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔